या पंचतत्व पर स्थित। ये संसार में जितने भी जीव हैं ये सभी भगवान के दास हैं। सभी लोग, कोई माने और कोई नहीं माने, सभी कृष्ण के दास हैं। भगवान ने हमें एक दुर्लभ रत्न दिया है, वो रत्न है स्वतंत्रता। जीव चेतन है और कुछ भी सोचने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए वो स्वतंत्र है, करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु फल भोगने के लिए परतंत्र है। कोई भी जीव जो इच्छा करे करे, किंतु उसका अच्छा या बुरा फल है अवश्य जीव को भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि बिना भगवत इच्छा के कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसका मतलब ये नहीं है जीव कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। अब कंस ने कृष्ण का विरोध किया तो कृष्ण की इच्छा थी कि कंस हमारा विरोध करे, ना नहीं थी? कंस की इच्छा एकदम नहीं होती, जड़ पत्थर बना होता, वो जड़ पत्थर होता है तो उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती। और यदि उसी में कृष्ण प्रवेश करते, इच्छा करते और उसके द्वारा अपना विरोध कराते तो इसका फल कंस को नहीं मिलता। कंस मारा गया, ये जो फल था तो कृष्ण के ऊपर में आता है, जो कृष्ण ने ऐसा करवाया। इसलिए ये जीव की स्वतंत्रता है। आदमी जब खूब कोई इच्छा करता है बार बार, भीतर में भगवान जो साक्षी के रूप में हैं वो कुछ परामर्श देते हैं, ये काम मत करो। बार बार कुछ न कुछ जरूर हिंट आएगा, चाहे चोर हो, डकैत हो, खूनी हो, दुराचारी हो, कोई भी हो, यदि कोई बुरा काम होगा तो 10 बार उसमें चेतनता देंगे, प्रेरणा देंगे, मत करो मत करो मत करो। और तभी तुम लोग करने पर उतारी हो जाओ तो करो, छोड़ दे, इसलिए वो काम होता है, छोड़ देते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा शिशु, मैया उसको रोकती है कि वहां आग है मत जा, किंतु वो मानता नहीं, वो इधर से उधर जाता है। आप मैया रोक लेती है तो रोता है, और छोड़ देती है तो फिर वहीं जाता है। मैया फिर रोक लेती है, फिर रो रो करके फिर उधर में चलता है, तो मैया छोड़ देती है और उसके पीछे पीछे वाच करती है कहीं जल न जाए। इसलिए वो जब जाता है ना, उसका हाथ पकड़ करके आग के सामने थोड़ा सा रख देती है, जब खूब गर्म होता है ऐसा, और फिर कभी नहीं जाता। ऐसे ही भगवान जब देखते हैं कि जीव नहीं मानता है, भीतर से प्रेरणा देते हैं, अच्छा तो तुम नहीं मानता, करो, इसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। यह है जीव की स्वतंत्रता। मान लिया भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, भारत गवर्नमेंट ने दिया, अजय अब नहीं करे क्षमा मांग लो, नहीं करेगा, अजय नहीं क्षमा नहीं मांगता, मैं शान से मरूंगा। 1000 बार उनको समझाया, मान जाओ क्षमा मांग लो, फिर नहीं करेगा, नहीं माना, ये जीव की स्वतंत्रता है। इसलिए भगवान ने ये जो चेतन जीव को जो स्वतंत्रता दी है, इसका सदव्यवहार और असदव्यवहार करना जीवों के ऊपर में निर्भर है। यदि उस स्वतंत्रता का सदव्यवहार करके भगवान का विरोध करता है, भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता, तो भगवान उसे दंड दे देते हैं अपनी माया के द्वारा। इस संसार में उनकी दो शक्तियां हैं, दीक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। पहले से अपने से दूर फेंक देते हैं या पहले ही उसको आवरण कर देते हैं महत्त्व के द्वारा, प्रकृति महत्त्व के द्वारा उसको आवृत करके चलिए, और अपने से भगवान से दूर उसे फेंक देती है संसार में, तब जड़ मन के चक्कर में चलता है। ऐसे जीवों को जो भगवान का आदेश नहीं मानता है, ऐसा बेटा छोटा सा जो मैया का आदेश इच्छा पालन नहीं करता, वो आग में हाथ जलाएगा ही, और यदि किसी कारण से मैया इधर उधर चली गई, उसने हाथ जला लिया, तो इसका कष्ट किसको होता है? बेटे को तो होता ही है, किंतु उसका कष्ट मैया को भी होता है कि नहीं? ये बेटा का हाथ जल गया, अब डॉक्टर के पास ले जाना, दवाई करना, उसको अपनी गोदी में रखना, संभालना, ये तो वही करती है। उसी तरह से भगवान के आप विरोधी जी भगवान को भूल करके स्वतंत्र होकर के अपनी सदव्यवहार स्वतंत्रता का असदव्यवहार करता है, तो माया उसे पकड़ कर जबरदस्त उसे कष्ट देती है, लाखों प्रकार के त्रितापों से जलाकर उसे दग्ध करती है, एक दो जन्म नहीं लाखों जन्म। हम लोग लाखों जन्मों के बाद इस जन्म में आए हैं, मथुरा में आए हैं, सदगुरु वैष्णव का संग मिल रहा है, कुछ चांस हो रहा है जो भजन कर, और तीस बार भी कोई नहीं भजन करता तो उसकी क्या दुर्गति होगी, इस चीज को समझो। इसलिए मन से संसार में जितनी हम तत्परता से काम करते हैं भाई, उससे अधिक तत्परता भगवान के भजन में करो। ये चांस अब लाखों जन्मों के बाद में मिल सकता है, नहीं घर मिला, इस चीज को समझो, लाखों जन्मों के बाद में मिला है, फिर लाखों जन्मों के बाद में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज को समझो। इसलिए संसार में अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ काम करते हो, उसका लाख गुना चेष्टा के साथ में। इसलिए एक लौकिक कार्य है, एक पारलौकिक कार्य है। पारलौकिक कार्य है भगवान का भजन करना, लौकिक हजार बाधा आने पर भी नहीं? सब काम नष्ट हो जाए तो भी क्या करना है? पारलौकिक कमरा संवारना है। सुस्त सिद्धांत यह है उरुगारी, भजिए राम सब काज। कोई कहते हैं बिगारी, एक है विषारी एक है बिगारी, दोनों एक ही चीज है। विषारी माने इन कामों को भूल करके, तो उसका काम बिगड़ जाएगा, तो अपने लाखों कामों को भी बिगाड़ करके भगवान का तुम भजन करो। श्रुति सिद्धांत यही 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 हमारा नित्य जीवन का धन है भगवान का। लोग इस चीज को नहीं समझते, एक पैसे की एक कौड़ी के बचाने के लिए भगवान का भजन भी छोड़ देते हैं। इस चीज को अच्छी तरह से आप लोग अनुभव कीजिए, एक फूटी ही कौड़ी और उधर पार्श पत्थर में क्या अंतर है, ये समझने की चेष्टा करें। फूटी कौड़ी के लिए कौन ऐसा मूर्ख है जो फूटी कौड़ी के लिए पार्श पत्थर को फेंक देगा? हाँ, बेवकूफ पागल होगा तो वो कर सकता है। इसलिए इस चीजों को समझ करके भगवान का भजन करना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। और जब हाथ चल गया बेटे का, तो जैसे मैया को बाप को कष्ट होता है, ऐसे ही जब जीव भगवान को छोड़ करके सेवा और माया में दुख पाता है, बधे कीर मर कट की नाई, बधे कीर मर कट की नाई। इसका उदाहरण दिया भागवत का उदाहरण तुलसीदास जी ने अपने चौपाई में ये इसको दिया, कितना अच्छा है। इसमें डूब करके देखने से ऐसे नहीं मालूम होता, बधे कीर मर कटकी नाई। एक बहेलिया था या बहेलिया है, वो जंगल में जाता है सुख पक्षी को पकड़ने के लिए। वो क्या करता है? दो चीज, जो डंडे पर एक डंडा खड़ा रहता है उसमें एक पहिया जैसा लगा देता है ना? जैसे पंखे जो पहले वाला जो ऐसे चलता था ना, तो वैसे कुछ लगा देता है ना? और वो ऐसा होता है यदि ऊपर कोई बैठे ना तो झट झट नीचे चला जाएगा भार। तो वो ऐसा कर करके जमीन में उसको दोनों डंडियों को गाड़ करके उसको ऊपर में एक राउंड कोई चीज ऐसा रख देता है जो इधर से घूमता रहे चक्के की। अब सुख पक्षी उस पर जो कोई ऊंची चीज होती है आकर के बैठते हैं, और ज्यों ही आकर के बैठा त्यों ही वो चक्का घूम गया, वो चला गया नीचे। अब वो डरता है जैसे मैं गिर जाऊंगा, इसलिए अपने उससे पकड़ लेता है, किसको? पैरों से उस पहिए को, चक्के को पकड़ लिया, और वो झूलता रह जाता है। वो सोचता है जब मैं गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा, छोड़ता नहीं है। तो उसको किसने बांधा? खुद बंध गया ना, उसको किसी ने बांधा नहीं। वो ऐसा छोड़ दे खुल जाएगा, वो उड़ जाएगा, किंतु छोड़ता नहीं। यह है कीर का उदाहरण। हम लोग माया से जो बंधे हैं, भगवान ने या माया ने नहीं बांधी, हम लोग बंधे हैं। इस चीज को समझो, भगवान ने नहीं बांधा, माया ने नहीं बांधा। एक नौजुवक लड़का नौजुवक लड़की को देख करके फिदा हो जाता है उस पर, और उसके प्रेम में बंध जाता है। जो नहीं करना चाहिए वैसे भी लोगों की गाली गुप्ता अपमान सब सहता है। ये बंधा बांधा कौन? अपने बंध गया ना। ठीक ऐसे ये माया है, ऐसी रूपवती है। कैसी रूपवती? ऊपर से देखने में, भीतर से आग, नहीं समझते हैं। उसको देख करके हम प्रलुब्ध हो जाते हैं, उसमें बंध जाते हैं, कीर की भांति। इसलिए ये सुगे का उदाहरण दिया, ये इसमें बंधने वाला कोई दूसरा नहीं, माया नहीं बांध रही, हम अपने खुद आ पड़े। माया छोड़ दो, कज मैं गृहस्थ में जीवन में हूं, माया ने हमें पकड़ रखा, तो आज ही छोड़ दो। आज ही घर छोड़ करके स्त्री पुत्र समझो जिसे हमारा नहीं है, छोड़ करके चले आओ। मैं कैसे आऊं? कौन बांध रखा? वो जो इसके अंदर में जिस स्नेह है अपना, उसी अपने स्नेह ने उसको जकड़ रखा, और कोई इसके लिए दाई नहीं। यही यही मोह ही बंधन है। मोह एवई कारणम, ये बंधन का कारण क्या है? हमारा अपना मोह। कोई कहता जी अब बड़ा दुखी हुई, छोड़ करके आ जा, हम तो चले हैं, तुम भी आ जा। एक कोई नहीं घर में है, एक छोटी सी लड़की है, उसकी शादी करके आओ, नहीं आता उस लड़की के मुंह में। घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी मोह किस लिए? बिल्लू मंगल का भी तो ऐसा मोह था, छोड़ दिया ना। और भी तो लोग छोड़, क्यों नहीं छोड़ते? ये छोड़ाएगा कौन? अपना ही छोड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई छोड़ाने वाला नहीं। इसलिए इस चीज को समझो। पहला उदाहरण किसका? तीर का। अब मरकट, मरकट का ये है, मरकट को बजाने वाले हमारे पूर्वाश्रम गांव में आए, बंदरों को बजाने वाले। बहुत बड़े बंदर हो गए थे, कम से कम तो हजारों बंदर, किसी को चैन से नहीं रहने दे। घर में रोटी बना रही हैं स्त्रियां, और जाकर झट से लेकर के चले, कोई चीज भी लेकर के जा रहा है, बच्चा उसको पकड़ लिया। मत वृंदावन में चश्मा ले लिया, चश्मा तो खाने की चीज नहीं थे, जानते हैं जैसे ये रोटी देगी, बड़ा तंग करते हैं। यहाँ तक कि सुनते हैं कि बच्चों को पकड़ लिया और लेकर के पेड़ पर चढ़ गए, अमैया जगह कर रही, ऐसे बदमाश। गांव वालों को तंग कर दिया, गांव वालों ने मिलकर के बंदर बजाने वालों को 100 रुपया दे करके उनको बुलाया। वो लोग आकर के अपना जाल लगा दिया। जाल कैसे लगाया देखो, अपने घर में देखा, उन लोगों ने आकर के बंदर देख रहे थे, और एक घड़े में बड़े बड़े आलू भर दिए, और वो देख रहे हैं बंदर, और उनको दिखा करके हुआ और घर के अंदर में रख दिया, और घर से निकल करके चले गए। उन लोगों ने दरवाजा खोल करके बंदर, एक बड़ा मोटा सा लंबा चौड़ा अंगद वाला बंदर, बंदर इतना मोटा, वो सबको काटता था, बड़ा तंग करता, वो घर में घुस गया और उस घड़े में उसने हाथ लगाया। एक तो आलू बड़ा बड़ा और उसका हाथ लग गया, जब उसे पकड़ा तो वो घड़े से निकले नहीं, और इतने में वो लोग देख रहे से दूर से लठिया लेकर के दो चार आए और दो चार लठिया, और वो छोड़ना ही रहा। उसको ये ज्ञान नहीं है कि इसको छोड़ दे तो हाथ निकल आए और मैं भाग जाऊं, वो छोड़ ही नहीं रहा। उसे मारते मारते जब बेदम करके दोनों हाथों को पकड़ करके ऐसे बांध दिया। अच्छा, ये घड़े में जो हाथ लगाया और उसको पकड़ रहा है, किसी ने बांधा ने अपने आप पकड़ रहा, इसे कीर मरकट की नहीं, ये मरकट का उदाहरण है। बंधन वाले दोस्त, हम अपने ही अपने उसमें लेकर के बन जाते हैं। एक और उदाहरण से साफ कर लो, एक आदमी बंगाल में, छोटा सा बच्चा, कोई मुढ़ी खरीद, मुढ़ी और ये और होता है खोई, मुढ़ी से भी हल्की खिल जिसको कहते हैं, खिल होती है ना, खिल, वो दुकान में खरीदने के लिए गया और जाकर के एक खंभा था, खंभा का ऐसे कर करके कहा जैसे ये दो, एक आने का दो आने का खिल दे दो, और ऐसे कहा जैसे हमको खिल दे दो। अच्छा, वो खिल तो ले लिया, और वो कैसे बाहर करे, यदि करता है बाहर तो सब खिल गिर जाएगी, अब वो खिल नहीं छोड़ रहा है और न वो अच्छा वो कैसे बंद गया। यही ठीक मनुष्य की है, माया को ऐसे पकड़ लिया अब छोड़ नहीं पाया, ये है माया। इसलिए ये जीव की स्वतंत्रता से अपने आप ये माया में बंधा है, दुख पा रहा है, भगवान को बड़ी दया लगती है। इसलिए भगवान अपने खुद आकर के अवतरित होकर के या भक्तों के माध्यम से उनको भेज करके जगत में बड़ी सस्ती सस्ती उपाय करते हैं, जैसे इनका फिर से उद्धार होकर के हमारी तरफ आए, किसी न किसी तरह से खोजते हैं, बहाना ढूंढते हैं। यदि इसने किसी ने जैसे तैसे भी चलते फिरते उठते बैठते ठीक एक बार मेरा नाम कर, दुख देने का कारण क्या है माया को जो दुख देती है, एक बार भी भूल से भी तो कह दे जी अरे प्रभु मैं तुम्हारे शरणागत, किंतु इतना दुख पाता है कभी ये नहीं पाता। मैया को बुलाएगा, दैया को बुलाएगा, पास पड़ोस को बुलाएगा, किंतु भगवान के लिए प्रार्थना नहीं करे प्रभु हमारी रक्षा, प्रभु कहते हैं कि एक बार तुम ऐसे तो कर, इतना कष्ट देते हैं दुख देते हैं। तब जब इस पर भी नहीं होता, खुद अवतरित होकर के ऐसी मनोहर लीलाएं करते हैं, इतना सुंदर जगत में प्रकाश करते हैं रूप, मधुर बोली से उसको लाते हैं। दुर्योधन के पास में गए, दूत बन करके विश्व ब्रह्मांड के अखिल ईश्वरों के ईश्वर आज दूसरे का नौकर बन करके, दूत बन करके जा रहे हैं, किसका, युधिष्ठिर महाराज जी का, पांडवों का दूत बन करके है? और गए समझा रहे हैं, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों का हिस्सा दे देना चाहिए, उन्हों का भी इस राज्य में आधा हक है, आधा हक तुम दे दो। जब किसी तरह से नहीं माना तो अच्छा तुम पांच गांव दे दो, इस पर भी वो राज्य है, मैं कहता हूं पांच गांव का गांव क्या, पांच सुई की नोक बहो, एक सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा, अब युद्ध होगा वही युद्ध में फैसला होगा, मैं नहीं दे सकता। इनको यदि ताकत है, जैसे द्रौपदी के कपड़े खींचते समय में ये हिजड़े बने हुए थे, अब इनमें शक्ति हो तो आकर के लड़ करके ले, यहां तक कि कृष्ण को उसने बांधने की चेष्टा की, कैद करके रख दी, और कृष्ण कैसे गया, वो जो उनको गए विश्व रूप दिखाया, सब थरहरी कंप करने लग गए, तब फिर डर करके भागे। अच्छा, ये जो विश्व रूप देखा है उसे बड़ी मधुर रूप से बोला, उनके सामने गया, इसका कुछ फल होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, जितना भी विरोधी है फल तो होगा कुछ नहीं, क्या होगा, माया ढीली पड़ जाएगी। अब उसका क्या, मारा तो गया युद्ध में बड़ी बुरी तरह से, किंतु युधिष्ठिर अर्जुन जहां पहुंचे उसके पहले वो वहां पर पहुंचा मर करके। स्वर्ग तो मिला ही, और कृष्ण का दर्शन करके जो युद्ध, दोनों तरफ से जो युद्ध करने वाले हैं वो मरे हैं जितने भी, कृष्ण का दर्शन किया, अर्जुन का, भीम का, सभी लोग बैकुंठ को चले गए, सभी लोग माया से मुक्त हो गए। तो दुर्योधन भी तो कंस कृष्ण के सामने मारा गया, कृष्ण ने इशारा किया, क्या इशारा किया, बस ऐसे किया, बस उनको पता था, बस यहां पर मारा ये गदा कमर से ऊपर में होनी चाहिए ना, इसके नीचे यदि मारेगा तो ये अन्याय युद्ध है। किंतु कृष्ण ने ऐसा ताल ठोकर कहा, ये कमजोर है, मैया की दृष्टि से बचा हुआ है, ये वज्र नहीं बना है और बाकी अंग सब वज्र, मारो यहीं पर, इशारा किया। जब ऐसे इशारा भीम ने वहां पर, तो ये कृष्ण वहां पर थे और कृष्ण की दिखलाए इंगित से भीम ने मारा, और दुर्योधन ये सब देख रहा है और देखते देखते मरा, तो उसकी गति नहीं होगी,
जरूर होगी,
इसे कुछ न कुछ तो उसकी गति अच्छी होगी। इसी तरह से भगवान जगत में आविर्भूत होकर के अपने द्वारा, भक्तों के द्वारा, किसी न किसी रूप में, जैसे नारद जी, मथुरा में आए कृष्ण के जन्म के बाद में, जन्म के पहले, पहला जन्म उनको बच्चा पैदा हुआ वसुदेव जी, नारद जी आकर के बैठ गए, अरे गुरु जी आ गए, गुरु जी आए, कंस आकर के उनके चरण पखाड़ा, उनकी आरती उतारी, चरणोदक लिए और उनकी बहुत अभ्यर्थना की। उन्होंने कहा, जब बेटा देख, मैं गया था देवताओं के उधर में, और वहीं पर कौन पर्वत, उसी में सबसे बड़ा पर्वत सुमेरु पर्वत के ऊपर में देवताओं की बड़ी भारी सभा चल रही थी, और मैं चुपचाप वहाँ पर सुना कि ये देवता लोग जदुवंशी में जादू बन करके आएंगे और कंस को मरने में भगवान की सहायता से, ये जितने भी जादू यहाँ पर देख रहे हो, उग्रसेन, अक्रूर, उद्धव इत्यादि, ये सब बड़े बड़े देवता, ये तुम्हें मारने का षड्यंत्र कर, इसलिए एक भी बच्चे को छोड़ना मत, पहला बच्चा छोड़ देगा फिर दूसरा अंतिम को मारेगा, तो ये सात बच्चे बड़े बड़े होकर के तुम्हें मारेंगे, उस समय तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकेगी, इसलिए इनको जो आए उसको मार। अच्छा, ये जो उनके पास में बैठे, उनका चरण धोया, उनसे बड़े मधुर मधुर से बातचीत किए, क्या किया, इसका फल क्या हुआ कंस के लिए, सब बच्चों को मारा ना, पाप कमाई, और भगवान के आने का कारण भगवान जल्दी से, बहुत देर के बाद में मरता, उन्होंने जल्दी से आकर तो उसको झट मारा और उसको मुक्ति दे दी। इस तरह से जितने भी भक्त हैं, भगवान हैं, किसी न किसी रूप में आकर विमुख जीवों को भगवान की तरफ में ला देते हैं, एक रास्ता बना देते हैं, फिर क्या करते हैं, वैष्णव का संग होने से उसे गुरु की से उसका संपर्क करा देते, फिर दीक्षा हुई, फिर किसी न किसी रूपे गुरु आश्रम में रह करके, गृहस्थ में रह करके, किसी न कोई ना कोई तो गुरु की सेवा करेगा कि नहीं करेगा, कुछ कोई ऐसा ही पाषंडी होगा जो गुरु का विरोध कर सकता है, अधिकांश लोग गुरु की किसी न किसी रूप में, और गुरु बड़े चतुर होते हैं, ऐसे चतुर होते हैं, बड़े मजे हुए खिलाड़ी गुरु होते हैं, ऐसे नहीं, जय जन कृष्ण भजे, वो लोग भागने की चेष्टा करेंगे और वो क्या करेंगे, छल से, बल से, कौशल से, जैसे तैसे किसी को जाने नहीं देंगे जो आ गया, गुरु जी को गाली भी देंगे कोई बात नहीं, वो किसी न किसी उपाय से बड़े मधुर रूप से उनको कह करके, समझा करके, किसी एक आदमी को अपने से विरत नहीं, यही गुरु का प्रधान लक्षण है, इस चीज को समझ, किसी को भी अप्रसन्न करने की चेष्टा नहीं, उसको किसी ने झूठ भी बोल करके, वो कहेंगे मैं तुमको सबसे अधिक प्यार करता हूं, उसको तो मैं कुछ नहीं करता, इतना भी झूठ बोल देंगे, सब कुछ करेंगे, और देखते देखते यदि किसी ने किसी को किया तो दूसरों को एक दो थप्पड़ मार भी देंगे, अब फिर उसको कहेंगे बेटा अरे वो बदमाश आदमी, वो भाग जाता है इसलिए तुमको मार दिया, बड़े चतुर होते हैं, और वो किसी भी जीव को जो उनके समीप चलाता है किसी न किसी रूप रूप में उसको भगवान की सेवा में नियुक्त करके उसका कल्याण कम हो अधिक हो जरूर करेंगे। इस तरह से गुरु की दीक्षा हुई, गुरु की सेवा करने लगा, धीरे धीरे उसके अंदर में कुछ अनिष्ठिता भक्ति आई, चित्त चंचल है, मैं घर में रह करके भजन करूं बाहर में करूं क्या करूं, घर को छोड़ दूंगा ये बिलबिला करके मरेंगे। फिर कहता है जैसे नहीं छोड़ दे नहीं अच्छा, चित्त चंचल, कभी घर में आता है बाहर में, गुरु काय करते हैं कोई बात नहीं तुम कभी कभी घर जाना कोई बात नहीं है, घर घर जाना और तुम्हारा ऋण यदि कुछ है तो मैं उसको थोड़ा सा चुका दूंगा कोई बात नहीं जाओ घर में आओ, ऐसे ढीली रस्सी और क्या टाइट भी करते हैं सबको किसी न किसी रूप में जोड़ना, जैसे भगवान जोड़ते हैं जीवों को अपने से ऐसे उनको जोड़ करके भगवान की तरफ। अब उसकी धीरे धीरे हरि कथा सुनते सुनते अनिश्चित जो उसकी निष्ठा थी अनिष्ठा अब उसको निष्ठा में बदल दी, धीरे धीरे उसमें रुचि, धीरे धीरे आसक्ति, धीरे धीरे उसमें भाव, भाव आते हो सकता है कि एक जन्म चला जाए, किसी की आसक्ति में ही जीवन चले। इस तरह से करते करते धीरे 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 आगे बढ़ जाते हैं, उन लोगों को लेकर के प्रेम तक पहुंचा देते हैं। ये गुरु जी का काम है, ये भगवान की ऐसी ही व्यवस्था है। अब जब यहां तक जब आया आसक्ति या रुचि में, तो रुचि में क्या करना होता है, भगवान की लीला कथाओं को सुनना चाहिए। इसको कैसी हरि कथा सुनाते हैं, गुरु जी पहले ताड़ लेते हैं उसके स्वभाव को, उसकी रुचि को परीक्षा कर लेते हैं, देखते हैं डॉक्टर कि यदि इसको घी की बनी हुई पकी हुई तली हुई कोई चीज देंगे हजम नहीं करने से पेट में बदहजम हो जाएगा, उसको कहेंगे जी साबूदाना बना करके और उसको दे देना और अधिक मत देना, और जिसका तंदुरुस्त शरीर है उसके लिए पुलाव है, खीर है, रसगुल्ले हैं, मलाई है, उसके लिए व्यवस्था कर, दोनों का उद्देश्य पुष्टि देना है। तो जो लोग थोड़ी सी भगवत भक्ति में रुचि आई है और वो लोग कुछ आगे बढ़ गए हैं, मध्यम अधिकार में आ गए हैं, उन लोगों को कुछ चारा देते हैं। कैसा चारा, मछली को जैसे चारा देते हैं, कैसे चारा देखा है, मछली मारने वाले जो तालाब के किनारे पर बैठे हुए और एक लक बांस की ये ले लेते हैं बंसी और उसमें 8-10 हाथ लंबी पतली सी रस्सी जोड़ करके उसके अंत में लोहे का एक एस लगा देते हैं ऐसा हुक जैसा, और लगा करके उसके अंदर में केंचुए भर करके या आटा भर करके या कोई चीज खाने की लगा देते हैं और पानी में फेंक देते हैं और चुपचाप अपने बैठ जाते हैं। यदि रस डंडी हिलने लगी तो क्या समझे हो, यदि फंस और उसको पकड़ लिया ने? पकड़ करके धीरे धीरे खींचते हैं और मछली के हृदय में जाता है, जब वो आती है धीरे धीरे किनारे आती है, देखा जैसे ये जम महाराज बैठा है बड़ी जोर से भागती है उस रस्सी को लेकर के और उसको ढीला कर देता है, वो चली जाती है। जब दूर चली जाती है फिर धीरे 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 ऐसे 2-4 बार घुमाने से वो एकदम अंकुश उसके हृदय में लग जाता है, हृदय फटने लगता है, उसको खींच लेता है और पकड़ लेता है। ठीक ऐसे ही शास्त्रकारों ने हमारे महाजनों ने एक चारा हमारे बद्ध जीव के लिए फेंका, देखा जैसे इसको रूप बड़ा अच्छा लगता है, इसकी स्त्री बड़ी प्यारी है, किसी को देखा इसका पति बड़ा प्यारा है या कोई किसी का भैया प्यारा है, कृष्ण की ऐसी सुंदर जोग माया के द्वारा लीलोपयुक्त जगत के लोगों के लिए उपयुक्त है, भगवान का नाम रूप गुण लीला परिकर इसका चारा फेंक दिया। चैतन्य महाप्रभु जी उसी को वर्णन कर रहे हैं जीवों के लिए यहाँ पर। यदि कोई जीव कृष्ण के इस रूप की महिमा सुने, उनकी बोली मधुर बोली की यदि महिमा सुने, यदि उनका सुस्वर यदि श्रवण करे, यदि उनके अंगों का गंध की महिमा यदि जान ले, उनका कितना कोमल स्पर्श है, कितना मधुर है, कितना सॉफ्ट कोमल है, इसका वर्णन कर रहे हैं भागवत में। क्या चीज है यही चीजों का वर्णन। यदि कोई अनर्थ निर्मुक्त या अनर्थ रहते हुए भी वैष्णव और गुरु भगवान की कृपा हो, इन चीजों को सुन करके उसको लोभ हो जाता है, ओहो इतना रूप सुंदर, इतना मधुर उनकी बोली, इतना सुंदर स्पर्श, इतना सुंदर उनका घ्राण सुगंध और क्या रहा आँख से इतना सुंदर रूप, बस जीव मोहित हो जाता है। यह वर्णन हम लोग सुन रहे हैं, सुन करके सबको एक बराबर भाव नहीं आएगा। जो कुछ अग्रसर हुए जीव हैं ये सुन करके इसमें मुग्ध हो जाएंगे और दिन रात इसी को पढ़ेंगे और इसी में निविष्ट हो जाएंगे और जल्दी से चुटकी बजाते ही माया को पार करके गोष्पद। कल या परसों कोई बतला रहा था गोष्पद की भांति इस भाव सागर को पार करके भगवान के इस चीजों को पा ले रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद और सर्व रामोदर जी का गला पकड़ करके ललिता विशाखा मान करके उनसे उस रूप का वर्णन कर रहे हैं, एक एक श्लोक पढ़ते जा रहे हैं और उसका भाव बतलाते चले जा रहे हैं। यदि वो नहीं बतलाते उन सब भावों को हम नहीं पाते। हमने उनके रूप की महिमा बतलाई, हमने उनके बोली की महिमा बतलाई, अब हम कह रहे हैं कोट इंदु शीतांग कह, कोटि इंदु है ना, कोटि इंदु, इंदु माने क्या, कोटि इंदु चंद्रमा को कहते हैं, करोड़ों करोड़ों चंद्र जितना सुशीतल हो सकता है उससे भी स्निग्ध कृष्ण के अंग किए हैं। उनका अंग ऐसा है सुंदर कोमल और सुशीतल है। कृष्ण अंग सुशीतल कैसा है, की करूं तार बल, की कहूं उनका बल, मैं क्या कहूं। छटाए जी ने कोटि इंदु चंदर, छटाए जी ने जो अपनी छटा से कोटि इंदु और कोटि चंदन की शीतलता को भी पराभूत कर देता है कृष्ण का अंगों का ये सुशीतलता, इतना सुंदर। एक होता है मृगनाभि कस्तूरी जिसको कहते हैं, कस्तूरी अंग के जिस गंध अंग में दे दिया जाए उस सारे अंग को सुशीतल कर देता है, कहीं भी दे दिया जाए। और एक कोई चीज ऐसी गर्म होती है जो जाड़े के दिनों में भी पान के अंदर में थोड़ा सा दे करके खाया जाए, कस्तूरी गर्म होता है तो कस्तूरी ही के लिए कर, कस्तूरी ऐसी गर्म होती है पान के अंदर में थोड़ी सी दे दिया जाए या कपड़ों के अंदर में थोड़ा सा लगा करके शरीर पर ले लिया जाए और शरीर से स्पर्श हो जाए, उसको इतना गर्म कर देता है कि जाड़ों के दिनों में वो सब कपड़ा छोड़ करके ऐसे पंखा रख देता है। एक बार कोई जर्मनी का या फ्रांस का कोई एक फैंसंग जैसा यात्री है ना, यात्री आया और मुगल दरबार में गया, वहाँ अकबर को देखा ये पान की बातें हुई और उसके दोनों तरफ से लोग हवा कर रहे हैं और वो एकदम मलमल का एकदम सफेद कपड़ा पहना हुआ केवल जाड़ों के दिन, ये कैसे वो कुछ ऐसा खाते हैं जैसे ऐसा ऐसे वो सुगंध के लिए सुशीतलता के लिए भी कोई चीज है। अत्यंत सुशीतल हरिचंदन बिंदु शायद कहते हैं, हरिचंदन बिंदु। ये चंदन कोटि इंदु चंदन, चंदन सुशीतल होता है। क्यों सुशीतल होता है? इस वृक्ष के अंदर में कोई ऐसी चीज है जो चंद्र की शुभ्र किरणों को और शीतल किरणों को वो ग्रहण करके कितना शीतल हो जाए। इस वृक्ष में ही ऐसी चीज है। हम लोग के यहाँ चंदन वह नहीं आता। हम लोग जो चंदन लेते हैं वो क्या है, बबूल और दूसरे दूसरे पेड़ के ये सब हैं, उसकी गंध से इसमें थोड़ा सा लग जाता है, इसलिए कहाँ होता है, सांप उसे घिरे रहते हैं, उसको बहुत ही कम मिल सकता है, बहुत कम। मलयाला गिरी कहते हैं, वो कहाँ है, मैसूर में शायद इसके पेड़ शायद हैं, किंतु बहुत दुर्लभ है। उसके भी सुशीलता को ये पराभूत कर देता है कौन, कृष्ण के अंगों की सुशीलता। सशैल नारी वक्ष तहां आकर्षित दक्ष आकर्षे नारी गण मन कृष्णांग सौरभ व्यवहार मृगमद मनोहर नीलोत्पलेर हरे गर्भधर। ये इतने सुंदर उदाहरण दिए हैं कि हम इस उदाहरण को भी सुनने में समर्थ नहीं, योग्य नहीं। इतना वो सुशीतल है, यदि किसी प्रकार से उसके अंग का स्पर्श हो जाए, यहाँ पर नारियां मैंने सब नारी नहीं मत समझो, केवल ब्रज की नारियां। ये शूर्पणखा, शूर्पणखा भी तो थी ना, वो एकदम निकट गई, किंतु रामचंद्र जी के सुशीतल अंगों का प्रभाव कुछ उतना पड़ा, उतना नहीं पड़ा, कुछ पड़ा नहीं पड़ा। इसलिए सबके लिए ही नहीं कहा, कुब्जा पर भी कुछ पड़ा, कुछ पड़ा। ये द्वारका की रानियों का भी सब समय संग हो रहा है, किंतु उनके लिए नहीं कहा, ये कहा गया है केवल उन गोपियों के लिए। उनका चित्त एकदम निर्मल है, वो कृष्ण राधा जी की काय व्यूह हैं, इसलिए उनके लिए संभव है। वो यदि कहीं अंग हो गया तो उनको पूरे को पूरा आकर्षण कर लेता, ऐसा ये कृष्ण का अंग है। आकर्षण नारी का निर्मल उन गोपियों का मन आकर्षण, एक बार यदि बहुत दूर से भी देख लिया तो भी ऐसा हो जाता है। ये किस लिए कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य क्या है, लोभ के लिए। इसलिए यहां पर जितना प्रसंग है वो उन लोगों के लिए है जो आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए। तभी हम लोग कुछ वर्णन कर रहे हैं, यदि हम लोगों में से कभी किसी जन्म में थोड़ा सा भी इसके प्रति लोभ होता है, बस आज ही देखो पौन घंटा हो, खूब अच्छी तरह से अपने आप पढ़ो।